بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 17 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں بیلی راجپوتا کی ملکہ، جس کی مصنفہ ہے نمرہ احمد. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 17. صفحہ نمبر 164. روز وہ تھانے جاتا تھا، تفتیش شروع تھی. نادر شاہ کو حراست میں لے لیا گیا تھا، مگر معاملہ ابھی دبا نہیں تھا. بدر ابھی تک مشتبہ تھا کہ اس کی گوپال سے پرانی دشمنی تھی. صرف اور صرف ایک شخص اس قصے سے اس کی گلو خاصی کروا سکتا تھا، اور وہ تھا قبرستان کا بھوت. وہ پچھواڑے آ گیا. دیوار کے ساتھ ایک کونے میں اس کا شکاری کتا شیرو بندھا تھا. زنجیر سے وہ اپنے پاؤں اور دم کو چاٹے جا رہا تھا. رکھے رکھے، بدر نے ملازم کو آواز دی. رکھا دوڑتا ہوا آیا. جی مالک. اس نے گیلے ہاتھ قمیض کے دامن سے پہنچے. یوں کرو مہری. اسی پل شیرو نے رکھے کو دیکھتے ہی بے تحاشا بھونکنا شروع کر دیا. بدر نے بات روک کے اسے دیکھا. کیا ہوا؟ گوشت ڈال رہا تھا دیکھ کے لیے، ہاتھ دھو لیے تھے، پھر بھی اس کو بو آ جاتی ہے. وہ جیسے جھنجلا کر شیرو کو دیکھنے لگا. بڑی ناک ہے اس کی، دور سے ہر شے سونگ لیتا ہے. اچھی قسم کا گوشت ہو تو زیادہ بھونکتا ہے، رکھا کہہ رہا تھا، اور وہ جیسے خواب سے جاگا. او خدایا، میں نے پہلے کیوں دھیان نہیں دیا اس بات پر. یوں کرو، اس کا گوشت وغیرہ ساتھ لو اور اسے میرے ساتھ لے کر آؤ، جلدی سے. وہ تیزی سے ہدایات دیتا استبل کی طرف بڑھ گیا. اور جب وہ تینوں پرانے قبرستان پہنچے تو رکھا ڈر کے پیچھے ہٹا. صاحب، میں اندر نہیں جاؤں گا. اندر جانا بھی نہیں ہے، وہ چڑھ کر بولا اور زنجیر اس کے ہاتھ سے لے لی. پھر کیا؟ شیرو کو ادھر باندھ رہا ہوں، صبح کھول دیں گے. مگر کیوں صاحب، یہ تو میرے باپ مت بنو. اس نے جھڑکا، پھر شیرو کی زنجیر خستہ حال پھاٹک کے ساتھ ایک جگہ سے باندھ دی. اب جو بھی اندر جائے گا اسے شیرو کو پھلانگ کر جانا ہوگا، اور ایسے میں اس کی بو تو وہ پا ہی لے گا. وہ اس کو کھلا چھوڑ سکتا تھا، مگر اس صورت میں شیرو شاید اس بھوت کا قیمہ ہی کر دیتا، جبکہ بدر یہ نہیں چاہتا تھا. کتے کو باندھ کر اس نے ایک الوداعی نگاہ پرانے قبرستان پہ ڈالی. تباہ حال قبریں، ٹوٹے پھوٹے کتبے، ان پہ جھکا سایہ کرتا برگد کا وہ بوڑھا اداس درخت، اور قبرستان کی خاموش پراسرار فضا، اندیکھی سفید لبادوں میں ادھر ادھر اڑتی روحیں. گو کہ وہاں کچھ بھی نہ تھا، مگر اس کا تخیل اسے دور لے گیا. شیرو، میری بات سنو، کسی کو اندر نہیں جانے دینا، مارنا بھی مت، مگر اندر مت جانے دینا. وہ اسے سمجھاتا گیا، اور شیرو دم مٹی پہ مارتا زمین پہ بیٹھ گیا. ملک صاحب، ملک صاحب، کسی نے صبح سویرے اس کا دروازہ پیٹ ڈالا تھا. وہ ہڑبڑا کر اٹھا. رکھا اسے پکارنے کے ساتھ ساتھ دروازہ زور زور سے بجا رہا تھا. وہ تیزی سے پلنگ سے اترا اور وہ دروازہ کھولا. سب خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے ملک صاحب. حواس باختہ سے رکھے کا سانس پھولا ہوا تھا. ہوا کیا ہے؟ شیرو کو کسی نے قتل کر دیا ہے. اس کی لاش پرانے قبرستان کے باہر پڑی ہے. وہ اسے دیکھتا رہ گیا، شاید وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا. صدمہ بہت شدید تھا. یوں لگتا ہے کہ زبردست مارا ماری ہوئی ہے جی. شیرو جوان منڈا تھا، شاید جم کر مقابلہ کیا تھا، مگر ظالموں نے ٹوکے سے گردن ہی کاٹ دی اس کی. چلو اس نے قمیض کے بٹن بند کیے، جوتی پہنی اور باہر نکل آیا. بدر ناشتہ تو کر لے. اماں پکارتی رہ گئی مگر وہ تقریباً بھاگتا ہوا باہر جا رہا تھا. ویران پڑے قبرستان کا پھاٹک بند تھا. پھاٹک کی طرف شیرو کی لاش پڑی تھی. وہ پہلو کے بل گرا پڑا تھا، گردن پہ کسی تیز دھار آلے کا نشان تھا، شاید کلہاڑی کے دو چار وار کیے گئے تھے، قریب ہی ڈھیر سارا خون پڑا تھا. اس کے قدم سست پڑ گئے، دل میں ڈھیروں دکھ اتر آیا. وہ آہستہ آہستہ چلتا شیرو کے قریب آیا اور پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا، دکھ سے اسے دیکھتے گیا. وہ اس کا بہت پرانا بہت وفادار دوست تھا. وہ ہمیشہ اس کے لیے بہترین گوشت بہترین دودھ منگواتا تھا. وہ بہت خونخوار تھا مگر بدر کی آنکھ کا اشارہ سمجھتا تھا. اسے یاد تھا جب وہ اسے ادھر باندھ کر گیا تھا تو اس کی ہدایت سن کر وہ کتنی سمجھداری سے بیٹھ گیا تھا، جیسے واقعی وہ کسی کو اندر نہیں جانے دے گا. وہ ایک دم چونکا. اسے یاد آیا اس نے شیرو کو قبرستان کے باہر باندھا تھا تاکہ وہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے. اسے اندازہ تھا کہ قبرستان کا بھوت پھاٹک کھول کر اندر داخل ہوتا تھا. وہ چاہتا تو چھوٹی سی چار دیواری کو پھاند بھی سکتا تھا مگر جانے کیوں وہ ہمیشہ پھاٹک استعمال کرتا تھا. اس نے اس لیے کتے کو باہر باندھا تھا جبکہ اب اس کی زنجیر کھلی پڑی تھی، جیسے کسی نے ہاتھ سے کھولی ہو، نہ کہ شیرو نے تڑوا لی ہو. قریب ہی تازہ مٹی کی کھدائی کا نشان تھا. بات کچھ سمجھ میں نہ آتی تھی، کیا وجہ تھی کہ کتے کو بھوت نے کھول دیا تھا. اس نے بغور دیکھا، شیرو کی لاش سے چند قدم دور گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک فاختہ اور دو گلہریاں مری پڑی تھی. بات اس کی سمجھ میں آنے لگی. چوہا پوش کو یقیناً کتے کی بابت علم ہو گیا تھا، سو وہ زہر آلود گوشت ساتھ لایا تھا. اس نے یقیناً اس کے سامنے گوشت پھینکا تھا. شیرو گوشت کو دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھا ہوگا اور گوشت کو شاید اس نے سونگا بھی ہو، مگر جیسے ہی چوہا پوش نے اندر داخل ہونا چاہا ہوگا، اپنے مالک کی ہدایت کے پیش نظر وہ لپک کر اس کو روکنے لگا ہوگا، تو اپنے دفاع میں بھوت نے اسے مار ڈالا ہوگا. گوشت پڑا کا پڑا رہ گیا اور گلہریاں اور فاختہ اس کا شکار بن گئی. پھر یہ مٹی اور کھلی زنجیر. وہ غور سے مٹی کو دیکھنے لگا. پھاٹک کے قریب مٹی کی چھوٹی ڈھیری تھی، ساتھ کھدائی کا نشان تھا جیسے پچھلی رات تازہ کھدائی کی گئی ہو، یعنی کہ بھوت نے کتے کو مارنے سے پہلے کھدائی بھی کی اور جب کتا بھونکنے لگا یا اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے جاتے جاتے کتے کا کام تمام کرنا مناسب سمجھا. مگر کیوں؟ اسے کتے سے کیا خطرہ تھا؟ وہ آرام سے دیوار پھاند کر بھی تو جا سکتا تھا. اس نے کتے کو مارنا کیوں ضروری سمجھا؟ شاید اسے ڈر ہو کہ کتا اس کی بو پا گیا ہے. اس نے کتے کو زہر آلود گوشت سے مارنا چاہا اور کتے نے حملہ کر دیا ہو تو اس نے اپنے بچاؤ میں کتے کو قتل کر ڈالا ہو. وہ ادھر ادھر زمین پہ غور سے دیکھتا پھاٹک تک واپس آیا. چونٹیاں شیرو کی لاش کے ارد گرد رینگ رہی تھی. شیرو کی گردن پہ خون جم چکا تھا. اس نے جھک کر شیرو کا منہ کھولا. کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس نے چوہا پوش کو کاٹا ہے کہ نہیں. کیا کرے؟ اور پھر وہ ٹھہر گیا. شیرو کے پنجوں پہ ناخون کے اندر گوشت کے ریشے پھنسے تھے اور معمولی خون بھی جمع تھا، یعنی شیرو نے بھوت پہ پنجوں سے حملہ کیا تھا اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ خون رس کر شیرو کے پنجوں پہ بھی لگ گیا تھا. یہ خون اس کا اپنا خون نہ تھا کہ اس کے ساتھ ریشے بھی تھے، یعنی اس وقت چوہا پوش کے جسم پہ کتے کے کاٹے کے نشان موجود تھا. وہ ادھر ادھر پھر سے دیکھنے لگا. اس کے نوکروں کے قدموں نے کھرے تباہ کر ڈالے تھے، ورنہ اسے امید تھی کہ اس صورتحال کے بعد چوہا پوش کو کھرے مٹانا یاد نہیں رہے ہوں گے. پھاٹک کے باہر دائیں طرف بلاخر اسے تین قطاروں میں کھرے نظر آ گئے. اس کے آگے پیچھے کے کھرے تباہ ہو چکے تھے. وہ غور سے انہیں دیکھنے لگا. وہ قدموں کے کھرے تھے، جوتی کے نہیں. دائیں پاؤں کا کھرا صاف تھا، بائیں پاؤں کا کھرا آدھا تھا، جیسے چوہا پوش بس ایڑی پہ زور دے کر پنجا اٹھائے چل رہا ہو. کیا وہ لنگڑا تھا؟ मगर नहीं, शायद वो लंगड़ा कर चल रहा था। यकीनन शेरू ने उसकी टांग पे जख्म दिया था और वो जख्म यकीनन टांग के खासे निचले हिस्से पे या पांव पे था, क्योंकि बाएं खुरों पे खून के 3-4 कतरे गिरे थे। जख्म शदीद था। वो खुरा किसका था ये सिर्फ कोई खोजी बता सकता था, मगर खोजी पुलिस का आदमी था। वो नादिशा के अब किसी बंदे पे भरोसा ना कर सकता था। बहरहाल मरते मरते भी शेरू अपना काम कर गया था। उसे अब गांव में किसी ऐसे शख्स को ढूंढना था जिसके पांव या पिंडली पे ताजा जख्म हो या जो लंगड़ा कर चलता हो। शेरू ने मरते मरते भी वफादारी निभा दी थी। हकीम जी अंदर है मासी? उसने सबसे पहले मासी नजीरा का दरवाजा खटखटाया था। दरवाजा खुला और आंखें मलते हुए उसे देखा। शायद वो अभी सोकर उठी थी। बदर बाबू, वह हैरान हुई। वो बहुत कम इधर आया करता था। हाँ, हकीम जी अंदर हैं। आओ अंदर आओ। वो उसे बैठक में ले आई। बैठो मलिक साहब। वो कपड़े से जगह झाड़ने लगी। खैर न लाए वो? हाँ जी, वो सोचते हुए बैठ गया। बस हकीम जी से काम था। मासी नजीरा दरवाजे तक जाती छिटक कर पलटी। कैसा काम? एक मरीज का पूछना था, वो इधर आया था शायद। किस वेले? कल रात। कल रात? वह हैरान सी सोच में पड़ गई। रात तो बस मौली गफूर की बीवी आई थी बच्चे की दवाई लेने, उसे यरकान था। तुम हकीम जी को बुलाओ, शायद उन्हें इल्म हो। उसने बेचैनी से पहलू बदला। वो इधर इसलिए आया था क्योंकि बेली में हकीम जी कुत्ते के काटे का इलाज करने वाले वाहिद हकीम थे। अगर चुगापोश भूत को शेरू ने काटा था तो वो यकीनन इधर ही आया होगा। दूसरी सूरत ये थी कि वो शहर चला जाता। वो ये भी कर सकता था, लेकिन अगर वो भूत जोगी शेखर ही था तो लाजमन इधर ही आता। दरवाजा खुलने की आहट हुई तो वो बेख्तियार खड़ा हो गया। हकीम जी अंदर दाखिल हुए। 50 से ऊपर का सन था। ढल के कंधे, सर पे टोपी और शाने पे साफा, लागिर सा इस्तख्वानी वजूद। उसे देखकर गर्मजोशी से मुसाफिया किया। कैसे आए पुत्र? फिर बैठते हुए बोले, नेक बख्त बता रही थी कि किसी मरीज का पूछना था। हाँ जी, वो बेचैनी से बोला, कल रात कोई शख्स कुत्ते के काटे का जख्म पिंडली या पांव पे लेके आया है। कल रात? वो हैरान हुए। नहीं, हरगिज नहीं। फिर से सोच के बताइए। उसे डर था कि उसने रिश्वत देके हकीम का मुंह बंद ना कर दिया हो। नहीं, कल रात तो कोई नहीं आया, बस मौलवी गफूर के बच्चे को यरकान। वो पूरी बात सुने बगैर उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया हकीम जी, चलता हूँ। हकीम जी है करते रह गए। वो तेजी से बाहर निकल गया था। अगर वो हकीम जी के पास नहीं आए तो यकीनन उसके पास खुद कोई तोड़ होगा या वो शहर गया होगा। ये भी मुमकिन है कि जोगी शेखर के पास तोड़ हो, वो दवा देने का काम भी करता था। लेकिन अगर वो शहर गया है तो वो जॉन कार्लिस हो सकता था। जाने क्यों बार बार उसका जहन भटक कर जॉन कार्लिस की तरफ जाता था। वही था जो शेखर के कत्ल में मुलविस था। वही था जो उस रात कब्रिस्तान में था। उसी ने माया को धमकी दी थी और यही धमकी भूत ने भी दी थी। उसे अब उन दोनों अफराद को असर नौ चेक करना था। हवेली वापस आकर उसने एक रुका लिखा, मैं कब्रिस्तान के भूत तक पहुंच चुका हूं, शाम तक हाजिर होकर बताऊंगा। रुका मुलाजिम को देकर माया की तरफ रवाना किया। अब उसका रुख जोगी शेखर की कुटिया की तरफ था। आज फिर उसका चेला बाहर बैठा था। वो उसके करीब गया। बाबा से मिलना है, मंगल तो कल गुजर गई। उसने कहते हुए चंद सिक्के निकाले और इन्हें एक हथेली से दूसरी में मुंतकिल किया। सिक्के खनक उठे। चेले ने बेख्तियार इधर देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। कहो तो अगली मंगल को आ जाऊं?
नहीं नहीं, तुम्हारे लिए वक्त निकल सकता है।
बहुत बेहतर। उसने सिक्के उसकी झोली में डाले और अंदर की जानिब बढ़ गया। खैमे में आज भी वही ताफुन फैला हुआ था। कपड़े की दीवारों पर उल्टे सीधे हुरूफ लिखे थे। एक कोने में हंडिया जल रही थी। जाने अंदर क्या पक रहा था। शेखर बाबा चौकड़ी मारे घुटनों पे हाथ रखे आंखें मूंदे बैठा था। वो एक नजर उसके चूहे के अंदर छुपे पांव पे डालकर मौदब से बैठ गया।
बोल, क्या मांगता है?
अपनी बीवी को हुजूर के पास इलाज के लिए लाना चाहता हूँ। उस दिन लाया था, अगर सरकार को याद हो। जोगी ने आंखें खोली और अगले ही पल उसे पहचान गया। उसकी लाल अंगारा आंखों में रमक सी दौड़ गई।
हाँ हाँ, याद है, आगे बोल।
फिर उसके पीछे खैमे के दरवाजे को देखा।
बीवी कहाँ है?
वो नहीं आती, वो आपसे इलाज करवाने से हिचकिचाती है हुजूर। अब के जोगी ने आंखें सुकोड़ कर उसे देखा।
सरकार?
वो कदरे आगे को हुआ।
मेरी बीवी कहती है मैं जिस्म गुजवाने वाले से अपना इलाज क्यों कर करवा सकती हूँ।
हाँ, हम अपना जिस्म नहीं गुदवाते।
पर सरकार, वो कहती है कि उसने खुद देखा था, आपने अपनी बाएं रान गुदवा रखी है।
वो कहती है जब तक उसे तसल्ली ना हो जाए कि ऐसा नहीं है, वो नहीं आएगी।
उसे वहम होते हैं।
नहीं,
किधर?
जोगी ने परेशान सा होकर चूहा हटाकर अपनी सूखी सड़ी बाएं पिंडली सामने की। बदर ने बेख्तियार गर्दन ऊंची करके देखा। उसकी पिंडली बिल्कुल साफ थी, न कुत्ते के कांटे का कोई जख्म था, न ही गुदवाने का निशान।
ठीक है सरकार,
वो जैसे नतीजे पे पहुंच गया था। मैं उसे शाम को ले आऊंगा, इजाजत दीजिए। तो उसका अंदाजा ठीक था, वो चूहापोश कोई और नहीं बल्कि जॉन कार्लिस था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने शक बल्कि यकीन की तस्दीक चाहिए थी। आज शायद किस्मत उसका साथ दे रही थी। वो जैसे ही घोड़े पे सवार गांव से निकलने लगा, जॉन कार्लिस अपने घोड़े पे सवार सामने कच्ची सड़क से आता दिखाई दिया। बदर को लगा आज सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। आह, डीसी बहादुर! उसने घोड़ा रोक लिया और मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। यकीन कीजिए महाराज, मैं अभी आपसे मुलाकात के लिए ही जा रहा था।
कहो मलिक, कोई खास काम था?
जॉन कार्लिस ने भी गर्मजोशी दिखाई। वो दोनों कच्ची सड़क के वस्त में आमने सामने घोड़ों पे थे। अतराफ में बेली के दरख्त सर ऊंचा किए खड़े थे।
आपको कुछ दिखाना था महाराज?
उसने जरा की जरा निगाह जॉन कार्लिस की पतलून में छुपी बाई टांग पर डाली। पांव में बूट और जुराबे थी और ऊपर कोट और सर पर हैट।
अरे वो क्या?
कार्लिस मुतजस्सिस हुआ। नहर में मुझे कुछ दिखाई दिया है। थानेदार पे भरोसा नहीं है, सो आपको जहमत दूंगा। यूं लगता है जैसे किसी वारदात का सुराग मिल गया हो। आप मेरे साथ चलिए।
वो बार बार एक चोर निगाह उसकी टांग पर डालता था।
क्यों नहीं, कार्लिस तैयार हो गया। अभी चलो। वो दोनों अपने घोड़े आगे पीछे नहर के करीब ले आए। कार्लिस मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगा।
क्षमा कीजिए महाराज, आपको जहमत होगी मगर आपको उतरना पड़ेगा।
हाँ क्यों नहीं, कार्लिस हैट संभालता घोड़े से उतर आया। उसकी चाल से कुछ जाहिर तो ना होता था मगर असल अंदाजा उसकी पिंडली देखकर ही किया जा सकता था।
इधर आइए।
बदर नहर में उतर आया और पानी में हाथ मारने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। कार्लिस मुतजब्जिब सा किनारे पे खड़ा रहा।
आ जाइए महाराज,
मुझे यहाँ खून नजर आया था, यकीनन कोई लाश करीब ही है।
इससे आगे कार्लिस को कुछ कहने की जरूरत न थी। अच्छा कहकर वो पानी में उतरने के लिए तैयार हो गया। बदर पानी में हाथ रोके उसे देखने लगा। उसे मालूम था कि जॉन कार्लिस जैसा फरंगी बहादुर पतलून ऊपर चढ़ाकर ही पानी में उतरेगा और यही उसे देखना था। कार्लिस झुका और पतलून ऊपर मोड़ने लगा। दाएं पिंडली सामने आई। अब वो जूते उतारकर बाएं तरफ की पतलून ऊपर तय कर रहा था। बदर हाथ रोके दम साधे उसे देखता रहा और फिर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। कार्लिस की सुर्ख और सफेद टांग बिल्कुल साफ थी। हल्के से सुनहरी बालों के रुएं के अलावा किसी किस्म का कोई निशान न था। उसका दिमाग भक से उड़ गया। फिर वो कौन था? कार्लिस अब पानी में उतर रहा था। बदर को एकदम ही वो बेहद मासूम नजर आने लगा। वो तो बेकसूर ही था। वो तो कोई और था और यकीनन अब तक गांव से भाग चुका था। अब वो माया को क्या बताएगा? उसने तो भूत पकड़ने का वादा कर दिया था। शदीद शर्मिंदगी, विक और मायूसी ने उसे एक आन घेरा। वो फिर से वहीं खड़ा था जहां पहले दिन था। कोई सुराख, कोई सिरा, कोई निशान उसके हाथ ना था। बहुत मुश्किल से कार्लिस से जान छुड़ाकर वो राजपूतों की हवेली आया था। हवेली खामोश और वीरान पड़ी थी। उसके मकीन अंधी दुश्मनियों और साजिशों की नजर हो चुके थे। उस लम्हे इस आलीशान हवेली के सामने खड़े उसे ठाकुर रघुनाथ पे बेपना तरस आया था। कितनी ही देर वो बड़े फाट के सामने खड़ा रहा। ये दहलीज उसने कभी पार ना की थी, फिर आज कैसे करता? और तब उसे बालकोनी में वो सोगवार सी बैठी सुनहरी बालों वाली लड़की नजर आई। वो बालकोनी में कुर्सी डाले, गोद में ऊन के गोले लिए सिलाइयों पे कुछ बुन रही थी। यकबारगी निगाह उठा कर दे नीचे देखा तो चेहरा खुशी से खिल उठा। जोर जोर से वो किसी को आवाज देने लगी और फिर मुस्कुराकर बदर को देखा। वो जवाबन मुस्कुरा भी ना सका। उसे अजीब सी खुफत हो रही थी। वो माया को क्या जवाब देगा? रूपवती भागती हुई आई और फाटक खोला। मेम साहब आपको ऊपर बुलाती हैं। वो उससे इनकार न कर सका। वो किसी मामूल की तरह चलता हुआ रूपा के पीछे अंदर आ गया। हवेली वीरान हो गई थी। फिजा सोगवार और दरो दीवार मातम कना थे। कभी ये महाराजा बलदियू सिंह का महल होती थी, अब बस एक हवेली रह गई थी। मगर महाराजा की अजमत और शान शौकत आज भी इसके मीनारों के कंगरों से टपक रही थी। वो सीढ़ियां उबूर करके माया के कमरे तक आया तो रूपा वापस पलट गई। धीरे धीरे चलते कमरा उबूर करके वो बालकोनी तक आया। सलाइयां अभी तक माया के हाथ में थीं। वो उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ी हुई तो ऊन का गोला जमीन पे गिर गया। आओ बैठो। वो यकीनन उसके आने से खुश थी। बदर बमुश्किल मुस्कुरा पाया, फिर वही मुंडेर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। कैसे हो? वो वापस कुर्सी पर बैठ गई। ऊन का गोला झुककर जमीन से उठाकर गोद में रखा। सलाइयां भी छोड़ दी थी। ठीक हूं, उसने सर झुका लिया। वो उसे क्या जवाब देगा? तुमने भूत का सुराग लगा लिया? वो बेसब्री से पूछने लगी। मैंने पीछा तो किया मगर, वो सर झटक कर मुंडेर के उस पार देखने लगा। दूर खेतों के ऊपर सूरज की सुर्ख सी गेंद नीले आसमान पे वाजे थी। चिड़ियों के गौल उड़कर अपने आशियाने को वापस पलट रहे थे। वो उड़ती चिड़ियों को देखे गया। मगर क्या, तुमने किसका पीछा किया? शेखर का? हाँ, मगर मैं जॉन कार्लिस से भी मिला। वो अब भी दूर होती चिड़ियों को देख रहा था। तो क्या वो भूत कार्लिस है? वो बेसब्री से खड़ी हुई तो ऊन का गोला जमीन पर लुढ़कता चला गया। धागा खुलता गया। माया ने झुंझला के उसे पकड़ना चाहा मगर गोला दूर जा रहा था। ठहरो। वो गोले के पीछे गई जो बालकोनी के कोने पे जाकर रुका था और झुककर उसे उठाया। बदर गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। हाँ तुम क्या कह रहे थे? वो गोला उठाकर वापस आ रही थी और बदर भूल गया कि वो क्या कह रहा था। वो क्या कहने आया था, वो सारा दिन क्या करता रहा था, उसे सब कुछ भूल गया था। वो बस यकटिक सामने का मंजर देखे गया। माया उनका गोला उठाए उसके करीब आ रही थी। बदर ने देखा वो लंगड़ा कर चल रही थी, दाएं पांव पे जोर देती, बाया पांव कदरे टेढ़ा रख के चलती। वो वापस कुर्सी पे बैठी, गोला फिर से गोद में धरा और टांग पे टांग रख ली तो नाइटी कदरे ऊपर हो गई। उसकी बाएं पिंडली झलकी जहां टखने से जरा ऊपर पट्टी बंधी थी, वो जैसे पत्थर का होकर रह गया। हाँ तुम क्या कह रहे थे, कौन है वो भूत? वो इसी तरह आम से अंदाज में पूछ रही थी और सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। बदर, उसने पुकारा तो वो जैसे ख्वाब से जागा। वो भूत तुम हो माया, वो चूहापोश तुम हो, तुम हो जो रोज रात को जाती थी पुराने कब्रिस्तान। वो चूहा तुम्हारा है, तुम थी जिसने मंगल सिंह को मरते देखा था। उसे अगर जिंदगी मौका देती तो वो मुझे बता देता कि वो भूत दरअसल शेखर की मेम साहब है, मगर वो कह ना सका। वो तुम थी माया, वो हमेशा से तुम ही थी। तुमने कल रात शेरू को मारा और ये भी जानती हो कि शेखर को किसने मारा है। तुम जानती थी कि वो भूत ना गोपाल है और ना ही जोगी, मगर तुमने मुझे गलत रास्ते पे लगाया ताकि मैं तुम पे शक ना कर सकूं। और उस रात जब गोपाल का खून हुआ तो वो तुम थी माया जिसने नादिर शाह का जुर्म देखा था, वो तुम थी माया। उसका दिमाग अभी तक साय साय कर रहा था, इतना बड़ा धोखा। वो खामोशी से उसका कहा गया एक एक लफ्ज सुनती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, तो तुम्हें जॉन कार्लिस ने सब कुछ बता दिया। तो कार्लिस सब जानता था, मगर वो ये सोचकर हैरान नहीं हुआ। अब कोई चीज उसे मजीद हैरान नहीं कर सकती थी। जॉन कार्लिस तुम्हारा क्या लगता है, वो बोला तो उसकी आवाज में अजीब सी शिकस्तगी और अजनबियत थी। माया ने हौले से इस्तेहजाया सर झटका, वो खबीज भुड्डा मेरा बाप है। और वो उसे देखकर रह गया। सामने खड़ी औरत कौन थी वो नहीं जानता था, वो तो कभी जान ही ना सका था। तुम कौन हो माया, तुम कौन हो? वो इसी तरह सामने खेतों को देख रही थी। नारंगी बादलों के सामने से इक्का दुक्का परिंदे उड़ रहे थे। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में बदर, वो बहुत देर बाद बोली तो आवाज में सदियों की थकन थी। यही कि तुम्हारा नाम माया फर्नांडिस है, तुम फिरंगी शहजादी और तुम शेखर की मोहब्बत में हिंदुस्तान आई। माया ने आहिस्ता से चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। ना मैं शहजादी हूं, ना ही मैं शेखर की मोहब्बत में हिंदुस्तान आई थी, और ना मेरा नाम माया फर्नांडिस है। उसकी सुनहरी आंखों में बेपनाह थकावट थी। मैं तो लंदन के थिएटर की एक अदाकारा हूँ बदर, मैंने तो बकिंगम का शाही महल आज तक अंदर से नहीं देखा। वो फिर से सामने देखने लगी। मैं मैरीन जॉन कार्लिस उर्फ मायावती कौन हूँ, हिंदुस्तान क्यों आई हूँ, यही तुमसे छुपाने के लिए। पार्ट 17 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है।